पहला इतिहास अध्याय 12, अध्याय 12 पद 1 और 2। जब दाऊद सिकलाग में कीश के पुत्र शौल के डर के मारे छिप रहा था, तब ये उसके पास वहां आए और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुधारी थे जो दहने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे, और ये शौल के भाइयों में से बिन्यामनी थे। इन मनुष्यों ने दोनों हाथों से गोफन से पत्थर फेंकने की कला सीखी थी। यदि एक हाथ में जख्म हो जाए या किसी कारण वो हाथ अयोग्य हो जाए तो दूसरे हाथ से गोफन चलाई जा सके। उल्टे हाथ से गोफन चलाना उन दिनों में एक विशेष कला थी। इन मनुष्यों को अलग रखा गया कि वे इस कला का विकास करें, और उन्होंने इसमें महारत हासिल किया। गोफन एक छोटा अस्त्र है और आज वास्तव में इसे निशाना साधने का कमाल कर सकते हैं। गोफन में चलने वाला पत्थर गुलेल के पत्थर से अधिक बड़ा होता है। यदि आप गुलेल चलाते हैं तो उसमें आप छोटे पत्थर काम में लेते हैं, परंतु गोफन में चलाने वाला पत्थर काफी बड़ा और गोल होता है, इसलिए गोफन से आप अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं और ठीक निशाना भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पकड़ने के लिए चमड़े के दो फीते और एक पत्थर रखने के लिए एक चौड़ा चमड़े का टुकड़ा होता है जो करीब हथेली के बराबर होता है। आप इस थैली में पत्थर रखते हैं। एक फीता दूसरे से बड़ा होता है। लंबे वाले फीते को आप अपने हाथ में बांधकर तीन उंगलियों से पकड़ते हैं, और दूसरा फीता इतना लंबा होता है कि उसे तीन उंगलियों से पकड़ सको। फिर इसे हवा में घुमाते हैं। जितने लंबे फीते होंगे उतने ही दूर आप पत्थर फेंक सकते हैं। जब आप इसे घुमाते हैं तो इसमें गति शक्ति उत्पन्न होती है, और आखिर में आप इसे अपने सिर के ऊपर लाकर एक फीते को छोड़ देते हैं। पत्थर हवा में आवाज करता हुआ तेजी से जाता है जो 300 फुट या अधिक दूरी तक मार कर सकता है। ये एक हथियार है और इन पुरुषों ने इसे सीधे हाथ से ही नहीं उल्टे हाथ से भी चलाने का अभ्यास किया था। ये युद्ध में एक कारगर हथियार था, क्योंकि हाथ से पत्थर फेंकने से अधिक तेजी से ये पत्थर फेंका जा सकता था। इसे ही दाऊद ने दैत्य जैसे पुरुष गोलियात को मार डाला था। ये लोग जो दाऊद के पास आए थे वे गोफन और तीर चलाने में दक्ष थे। जब दाऊद फिलिस्तीन में था तब ये लोग उसके पास आए थे। अध्याय 12 पद 8 के अनुसार वे गाद के गोत्र के थे। अध्याय 12 पद 8। फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला भी काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिम के से और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले भी थे। मुझे ऐसा लगता है कि उन सब की पूरी पूरी दाढ़ी होती थी और वे बड़े खतरनाक दिखते होंगे। अध्याय 12 पद 8 में आगे लिखा है, ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए। निस्संदेह उन दिनों के लोग वास्तव में हमसे अधिक विशाल और बलवंत होते थे, क्योंकि उनके पास कार या साइकिल आदि नहीं होती थी। जहां भी जाना हो उन्हें पैदल ही चलना पड़ता था। आज जब मैं इसराइल जाता हूं मैं उन चरवाहों को देखता हूं जो अपने जानवरों के पीछे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। वे मजबूत कद काटी के होते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते तो उनके साथ पहाड़ पर भागो, आप शीघ्र ही हांफने लगेंगे। वे लोग असीम शारीरिक बल रखते थे, उनकी शारीरिक अवस्था भी अति उत्तम थी, वे तेज दौड़ने वाले भी थे। ये सब दाऊद के पास इकट्ठे हो गए। अध्याय 12 पद 16 में उन लोगों का विवरण दिया गया है जो बिन्यामीन के गोत्र से आए थे। अध्याय 12 पद 17 और 18 उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो तो हमारे पितरों का परमेश्वर उस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। अब आत्मा अमसई में समाया जो 300 वीरों में से मुख्य था और उसने कहा, हे दाऊद हम तेरे हैं, हे यिशै के पुत्र हम तेरी ओर के हैं, तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुख्य ठहरा दिए। यहां दाऊद निस्संदेह मसीह का एक सुंदर प्रतिरूप है, जिसका अभिषेक इसराइल का राजा होने के लिए किया गया था, परंतु शौल ने उसे तुच्छ जानकर उसका तिरस्कार किया और उसे देश त्यागने के लिए बाध्य किया। जब वो प्रतीक्षा ही कर रहा था तब लोगों ने उसके पास आकर अपना सहयोग और निष्ठा का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। वे सब उसके पास आकर इकट्ठे हुए, जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है, इब्रानियों 13:13। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन दाऊद के पास आने लगे और उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते बहुत अधिक हो गई, जैसे कि परमेश्वर की सेना। ये वे लोग थे जिन्होंने दाऊद के लिए समर्पण कर दिया था, हम तेरे हैं, हम तेरी ओर के हैं। शौल के मारे जाने के बाद इन लोगों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर उसे राजा बनाया और कहा, आकर हम पर राज कर। अध्याय 12 पद 24 से लेकर 26 तक यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6,800 हथियारबंद लड़ने को आए, शिमोनी 7,100 तैयार शूरवीर लड़ने को आए, लेव्य 4,600 आए। पद 29 से लेकर 31 और शौल के भाई बिन्यामिनियों में से 3,000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामिनियों से अधिक शौल के घराने के पक्ष करते रहे। फिर एप्रेमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घराने में नामी पुरुष 20,800 आए, और मनुष्य के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। अध्याय 12 पद 33 फिर जबुलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पांति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए, वे पांति बांधने वाले थे और चंचल ना थे। प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि लोग निष्ठा निभाने में दोहरी विचारधारा रखते हैं, परंतु ये 50,000 पुरुष ऐसे नहीं थे, वे एक निष्ठ दाऊद की ओर थे। अध्याय 12 पद 34 से लेकर 38 तक फिर नप्ताली में से प्रधान तो 1,000 और उनके संग ढाल और भाला लिए 37,000 आए, और दानियों में से लड़ने के लिए पंक्ति बांधने वाले 28,000 600 आए और आशेर में से लड़ने को पांक्ति बांधने वाले 40,000 योद्धा आए और यर्दन पार रहने वाले रूबेनी गादी मनशे के आधे गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 120,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पांक्ति बांधने वाले दाऊद को सारे इसराइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए और सब इसराइल भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। जरा सोचे जब वे हेब्रोन से यरूशलेम आए होंगे तो ये कैसी विशाल सेना रही होगी। हेब्रोन में तो उत्सव मनाया गया था और लोगों के खाने के लिए गधों पर भोजन वस्तु भरकर लाई गई थी, पर उन सब को सुव्यवस्था के साथ खिलाना कितना कठिन कार्य रहा होगा। उन्होंने रोटियां और भोजन वस्तु आदि गधों ऊंटों और खच्चरों पर लाद कर लाया और बड़ा उत्सव मनाया। अध्याय 12 45। क्योंकि इसराइल में आनंद मनाया जा रहा था।